स्वतंत्रता का भ्रम, कड़ी संघर्ष से जीते अधिकारों से भू राजनीतिक वफादारी के नाम पर दमन तक। स्वतंत्रता का भ्रम तब तक बना रहेगा जब तक उसे बनाए रखना लाभदायक रहेगा। जिस बिंदु पर यह भ्रम बनाए रखना बहुत महंगा हो जाएगा, वे बस मंच की सजावट हटा देंगे, पर्दे पीछे खींच लेंगे, मेज और कुर्सियां हटा देंगे और आप थिएटर के पीछे की ईंटों की दीवार देखेंगे। ये शब्द 1970 के दशक के अंत में प्रतिष्ठित संगीतकार और सामाजिक आलोचक फ्रैंक ज़प्पा से जुड़े हुए हैं। लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की नाजुकता के बारे में गहन नास्तिकता को व्यक्त करते हैं। ज़प्पा का रूपक सुझाता है कि स्वतंत्रता के तत्व बोलने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने और विरोध करने की स्वाभाविक या शाश्वत नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा प्रदर्शित तत्व हैं जो केवल तब तक बनाए रखे जाते हैं जब तक वे नियंत्रण, लाभ या स्थिरता के व्यापक हितों की सेवा करते हैं। जब असहमति इन आधारों को खतरे में डालती है तो मुखौटा गिर जाता है और नीचे छिपी तानाशाही व्यवस्था उजागर हो जाती है। चल रहे गाजा संकट और पश्चिमी लोकतंत्रों में इसके प्रभावों के संदर्भ में ज़प्पा की अंतर्दृष्टि भयानक रूप से पूर्वानुमानित लगती है। यह निबंध जांच करता है कि मानव अधिकार प्रबुद्ध राज्यों से दयालु उपहार होने के बजाय सदियों के क्रूर संघर्ष से गढ़े गए हैं, कैसे जर्मनी, यूके, यूएस, फ्रांस, नेदरलैंड्स और कनाडा जैसे पश्चिमी राष्ट्रों ने प्रो फिलिस्तीन सक्रियता को दबाने के लिए इन अधिकारों को पढ़ते हुए निलंबित या त्याग दिया है, कैसे यह घरेलू दमन कब्जे वाली वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के साथ व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है, और अंत में कैसे गाजा संघर्ष ने पश्चिमी सरकारों और मीडिया की इजराइल के प्रति अटूट समर्थन जर्मनी की स्टैट्सरिजॉन सिद्धांत से उदाहरणित को अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार से ऊपर प्राथमिकता देने को उजागर कर दिया है। गढ़ी गई नींवें, संघर्ष और बलिदान से मानव अधिकारों का इतिहास। आज पश्चिमी लोकतंत्रों में जैसा हम समझते हैं मानव अधिकार, उदार शासकों द्वारा दिए गए अमूर्त आदर्श नहीं है, बल्कि अत्याचार, असमानता और दमन के खिलाफ निरंतर लड़ाइयों की खाबों वाली विरासतें हैं। उनका विकास सहस्राब्दियों पुराना है, लेकिन आधुनिक ढांचा दार्शनिक जागरणों, क्रांतियों और जमीनी आंदोलनों की टैपेस्ट्री से उभरा है जिन्होंने अनिच्छुक सत्ताओं से रियायतें छीनी। सबसे शुरुआती मील के पत्थरों में से एक जिसका अक्सर जिक्र होता है वे 539 ईसा पूर्व का साइरस सिलेंडर है, एक प्राचीन फारसी कलाकृति जिसमें विजित क्षेत्रों में धार्मिक सहिष्णुता, गुलामी की समाप्ति को बढ़ावा देने वाले आदेश अंकित हैं। हालांकि इतिहासकारों के बीच इसे मानव अधिकार चार्टर के रूप में व्याख्या विवादित है। यह कलाकृति प्रतीक है कि अधिकार कुलीनों के लिए विशेषाधिकार नहीं बल्कि सार्वभौमिक हो सकते हैं। मध्ययुगीन यूरोप में 1215 का मैग्ना कार्टा अंग्रेजी बैरनों और राजा जॉन के बीच निर्णायक टकराव का प्रतीक था, जिसने उचित प्रक्रिया और मनमानी शाही शक्ति पर सीमाओं जैसे सिद्धांत स्थापित किए गए, सिद्धांत जो सशस्त्र विद्रोहों पर बातचीत से छीने गए थे न कि शाही कृपा से। पुनर्जागरण और ज्ञानोदय काल ने इन विचारों को बढ़ावा दिया। जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और वोल्टेयर जैसे विचारकों ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों को मानवता के लिए अंतर्निहित बताया, जो ईश्वरीय अधिकार वाली राजशाहियों को चुनौती देते थे। इन दर्शन ने अमेरिकी क्रांति 1775-1783 और फ्रांसीसी क्रांति 1789-1799 को प्रेरित किया, जहां उपनिवेशवादी और नागरिक उपनिवेशीय शोषण और निरंकुशता के खिलाफ उठे। यूएस स्वतंत्रता की घोषणा 1776 ने अविभाज्य अधिकारों की घोषणा की, जबकि फ्रांस की मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा 1789 ने समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित किया, दस्तावेज जो रक्तपात, गिलोटिन और साम्राज्यों के पतन से जन्मे। फिर भी ये शुरुआती विजय अधूरी थी, अक्सर महिलाओं, गुलामों और स्वदेशी आबादी को बाहर रखती थी। 19वीं सदी में गुलामी विरोधी आंदोलनों ने देखा, जैसे यूएस में फ्रेडरिक डगलस और हैरियट टबमैन जैसे नेताओं द्वारा ट्रांसअटलांटिक गुलामी विरोध, जो गृहयुद्ध 1861-1865 और 13वें संशोधन में समाप्त हुआ। यूके और यूएस में सुफ्रजेट्स ने गिरफ्तारियां, जबरन खाना खिलाना और सार्वजनिक तिरस्कार सहते हुए महिलाओं के मताधिकार को सुरक्षित किया, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन 1848 और 1913 की महिला मताधिकार जुलूस जैसे अभियानों से, जो यूएस में 19वें संशोधन 1920 और यूके में आंशिक मताधिकार 1918 तक ले गए। 20वीं सदी में वैश्विक युद्धों और उपनिवेशवाद विरोध के बीच इन संघर्षों को तीव्र किया। द्वितीय विश्व युद्ध और हॉलोकॉस्ट की भयावहताओं ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र में एलिनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा यूडीएचआर को प्रेरित किया, जिसमें बोलने, एकत्रित होने और मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा की स्वतंत्रताएं संहिताबद्ध की गईं। यह ऊपर से दिया उपहार नहीं था, यह यूरोप भर में एंटी फासिस्ट प्रतिरोध आंदोलनों को प्रतिबिंबित करता था, जहां पक्षपातियों और नागरिकों ने नाजी कब्जे के खिलाफ भारी कीमत पर लड़ाई लड़ी। युद्धोत्तर युगों में नागरिक अधिकार आंदोलनों ने प्रणालीगत नस्लवाद का सामना किया। यूएस में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अहिंसक अभियानों ने पुलिस कुत्तों, पानी की बौछारों और हत्याओं का सामना किया, जो नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 और मताधिकार अधिनियम 1965 तक ले गए। यूरोप में श्रम हड़तालें, अल्जीरिया और भारत में एंटी कॉलोनियल विद्रोह और फ्रांस के मई 1968 छात्र विद्रोह जैसे ने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को विस्तार दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संधि 1966 को प्रभावित किया। हाल ही में LGBTQ+ अधिकार स्टोनवॉल दंगों 1969 और 8 सक्रियता से आगे बढ़े, जबकि स्टैंडिंग रॉक 2016 जैसे स्वदेशी आंदोलन पर्यावरण और भूमि अधिकार उल्लंघनों के खिलाफ चल रहे संघर्षों को उजागर करते हैं। पूरे इतिहास में ये अधिकार दिए नहीं गए बल्कि हड़तालों, मार्चों, बहिष्कारों और कभी कभी सशस्त्र प्रतिरोध से छीने गए, ये याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रताएं सत्ता से रियायतें हैं जो असुविधाजनक होने पर वापस ली जा सकती हैं। अधिकारों का क्षरण, प्रो फिलिस्तीन असहमति पर पश्चिमी लोकतंत्रों का दमन। एक कटु विडंबना में वे राष्ट्र जो इन कड़ी जीती स्वतंत्रताओं का प्रचार करते हैं, हाल के वर्षों में इजरायली नीतियों की आलोचना को चुप कराने के लिए इन्हें प्रभावी रूप से निलंबित या त्याग चुके हैं, विशेष रूप से अक्टूबर 2023 से बढ़ते गाजा संघर्ष के बीच। यह दमन मानव अधिकार संगठनों द्वारा दस्तावेजित अत्यधिक पुलिसिंग, कानूनी अतिरेक और वैध विरोध को चरमपंथ या यहूदी विरोध से जोड़ने से प्रकट होता है, जो खुलासा करता है कि स्वतंत्रताएं राज्य हितों से संरेखन पर सशर्त हैं। जर्मनी इस प्रवृत्ति का उदाहरण है, जहां अधिकारियों ने प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शनों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे हिंसक दमन हुए हैं। 2025 में संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने जर्मनी की पुलिस हिंसा और दमन की निरंतर पैटर्न की निंदा की, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर मनमानी गिरफ्तारियां, शारीरिक हमले और नदी से समुद्र तक फिलिस्तीन आज़ाद जैसे नारों का अपराधीकरण शामिल है। वुलिन कोर्ट ने नवंबर 2025 में अप्रैल में एक प्रो फिलिस्तीन सम्मेलन बंद करने को गैरकानूनी बताया, फिर भी ऐसे हस्तक्षेप जारी हैं जिसमें निर्वासन और एक चुट्टा समूहों के लिए फंडिंग कटौती शामिल हैं। लेफ्ट पार्टी ने इस दमन को समाप्त करने का आग्रह किया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तानाशाही रिंगने की चेतावनियों की गूंज में। यूके ने पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2023 जैसे कानूनों के तहत आतंकवाद विरोधी शक्तियों का विस्तार किया, जिससे 2024 में अकेले आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्टों के लिए 9,700 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, जिनमें से कई फिलिस्तीन समर्थन से संबंधित। प्रदर्शनों में बड़े पैमाने पर हिरासतें होती हैं, प्रो फिलिस्तीन मार्चों में सैकड़ों गिरफ्तारियां आतंकवाद आरोपों से, फिलिस्तीन एक्शन जैसे समूहों के खिलाफ। ह्यूमन राइट्स वॉच और बिग ब्रदर वॉच से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ठंडा करने वाला बताते हैं, पीटरलो नरसंहार जैसे ऐतिहासिक संघर्षों से जीते अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था पर। यूएस में 2023-2025 में कैंपस एनकैंपमेंट्स पर 3,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं, पुलिस द्वारा रासायनिक उत्तेजक और निर्वासन की धमकियां इस्तेमाल की गईं। फ्लोरिडा जैसे राज्य एंटी ज्योनिज्म यहूदी विरोध के बराबर मानते हैं, समूहों की जांच करते हैं और अनुबंधों में BDS भागीदारी प्रतिबंधित करते हैं, अकादमिक स्वतंत्रता के खिलाफ कानूनों का हथियार बनाते हैं। फ्रांस ने उर्जेंस पैलेस्टीन जैसे सामूहिकों को आतंकवाद विरोधी बहानों से भंग किया, रैलियों पर 500 से अधिक हिरासतें और नए बिल जो आतंकवादी समर्थन या इजराइल के अस्तित्व से इनकार को अपराधी बनाते हैं। एमनेस्टीन की व्यापक दमन के रूप में आलोचना करता है, अल्जीरियाई युद्धकाल से असहमति दबाने की राज्य की इतिहास की गूंज। नेदरलैंड्स ने 2024 एम्स्टर्डम हिंसा के बाद यहूदी विरोधी व्यक्तियों अक्सर गाजा आलोचकों के लिए कोर्ट से पासपोर्ट छीनने का प्रस्ताव दिया और समिदॉन जैसे समूहों पर प्रतिबंध। एक नए टास्क फोर्स ने प्रदर्शन प्रतिबंधों को जन्म दिया, जर्मनी की गिरावट की नकल। कनाडा के शहरों जैसे टोरंटो में बायलॉ प्रदर्शन स्थलों को प्रतिबंधित करते हैं, विश्वविद्यालय दमन और संघीय धक्के चरमपंथी समूहों पर प्रतिबंध के लिए, अधिकार और स्वतंत्रताओं के चार्टर का उल्लंघन। फिथ के अनुसार ये पश्चिम में फिलिस्तीन एकजुटता में विरोध के अधिकार पर निरंतर हमला दर्शाते हैं। दमन के समानांतर पश्चिमी नागरिक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की स्थिति की गूंज। यह घरेलू क्लैम्पडाउन पश्चिमी नागरिकों विशेषकर प्रो फिलिस्तीन आंदोलनों में को आंतरिक अन्य के रूप में मानता है, उन्हें निगरानी, हिंसा और मनमानी हिरासत में डालता है जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के अनुभव से समानांतर है। वहां बसावटकर्ता हिंसा और सैन्य अतिरेक 2025 में नाटकीय रूप से बढ़े हैं, आतंक का शासन पैदा करते हुए जो पश्चिमी प्रदर्शनकारी अब सूक्ष्म रूप में अनुभव करते हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली बसावटकर्ता अक्सर सैन्य समर्थन से फिलिस्तीनी घरों और भूमियों पर हमले करते हैं, जिसमें पिटाई, आगजनी और भूमि हड़पना शामिल है, हिंसा सर्वकालिक उच्च पर। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2025 रिपोर्ट हिंसा और हिंसा के भय से जबरन विस्थापन दस्तावेजित करती है, सेना समुदायों को घातक बल से निकालती है और बसावटकर्ता हमलों को रोकने में विफल रहती है। चेकपॉइंट्स पर मनमानी गिरफ्तारियां सामान्य हैं, फिलिस्तीनी अपमान, पिटाई और बिना आरोप अनिश्चित हिरासत सहते हैं, दोहरी कानूनी व्यवस्था में जहां बसावटकर्ताओं को दंडमुक्ति मिलती है जबकि फिलिस्तीनी सैन्य अदालतें झेलते हैं। ओचा रिपोर्टें विनाशकारी छापों, जेलों में यातना और गति प्रतिबंधों का विवरण देती है जो दैनिक जीवन को नष्ट करते हैं। 2025 में अकेले 500 से अधिक फिलिस्तीनियों की सेना या बसावटकर्ताओं द्वारा हत्या। इन अन्यायों का विरोध करने वाले पश्चिमी नागरिक समान रणनीतियों का सामना करते हैं, प्रदर्शनों पर पुलिस चेकपॉइंट्स मनमाने रोक और तलाशी की ओर ले जाते हैं, अहिंसक सक्रियता पिटाई और रासायनिक हथियार सहती है, बसावटकर्ता सैन्य सहयोग की तरह। जर्मनी और यूएस में डॉक्सिंग और निर्वासन धमकियां वेस्ट बैंक निर्वासनों की नकल करती हैं, जबकि यूके और फ्रांसीसी एकत्रित होने पर प्रतिबंध भूमि पहुंच इनकार की गूंज हैं। यह अभिसरण वैश्विक दमन को रेखांकित करता है, जैसे फिलिस्तीनी बसावट उपनिवेशवाद का प्रतिरोध करते हैं, पश्चिमी असहमत इसका साथ देने में चुनौती देते हैं, केवल उसी व्यवस्था को खतरा मानकर राज्य हिंसा का सामना करते हैं। चक्र पूरा करना, गाजा का पश्चिमी प्राथमिकताओं और अधिकारों की नाजुकता का खुलासा। गाजा संघर्ष, इसके विनाशकारी टोल के साथ हजारों मृत और व्यापक विनाश ने अंततः उजागर किया है कि पश्चिमी सरकारें और मीडिया इजराइल के साथ भू राजनीतिक गठबंधनों को अपने नागरिकों द्वारा संघर्ष से जीते अधिकारों से ऊपर प्राथमिकता देते हैं। जर्मनी की स्टार्टसरिजोन इसकी राज्य कारण सिद्धांत जो इजराइल की सुरक्षा को हॉलोकॉस्ट प्रायश्चित के कारण अटूट मानता है इसका प्रतीक है। प्रो फिलिस्तीन आवाजों के दमन को यहूदी विरोध से सुरक्षा के रूप में न्यायोचित ठहराता है, भले संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ इसे भेदभावपूर्ण बताते हैं। समान गतिशीलता अन्यत्र प्रचलित। यूएस का इजराइल को सालाना $3.8 बिलियन सहायता घरेलू अभिव्यक्ति चिंताओं से ऊपर, जबकि यूके और फ्रांसीसी नीतियां नेटो और यू इजराइल समर्थक रुख से संरेखित। मीडिया पक्षपात इसे बढ़ाता है। 2025 मीडिया 22 मीटर विश्लेषण ने 54,449 लेखों में पाया कि पश्चिमी मीडिया इजराइल का जिक्र फिलिस्तीन की तुलना में कहीं अधिक सहानुभूतिपूर्ण करते हैं, इजरायली कथाओं को प्राथमिकता देते और फिलिस्तीनी पीड़ा को कम करते। अध्ययन प्रणालीगत पक्षपात उजागर करते हैं, जैसे फिलिस्तीनी मौतों को निष्क्रिय फ्रेमिंग जबकि इजरायली पीड़ितों को मानवीय बनाना, शीतयुद्ध काल के पश्चिमी हित प्राथमिकताओं की गूंज। जैसे सोशल मीडिया अनफिल्टर्ड गाजा फुटेज से इसका मुकाबला करता है, मुख्यधारा मीडिया की विफलताएं अल जजीरा द्वारा सफेदीकरण आरोपित भ्रम बनाए रखने में सहभागिता उजागर करती हैं। जपा की ईंटों की दीवार यहां उभरती है, जब बोलने, विरोध और बहिष्कार जैसी स्वतंत्रताएं इजराइल समर्थन को चुनौती देती हैं, तो उन्हें बनाए रखना बहुत महंगा माना जाता है। गाजा का खुलासा एक हिसाब मांगता है, क्या नागरिक अपने पूर्वजों द्वारा लड़ी स्वतंत्रताएं पुनः दावा करेंगे या सजावट गिरने देंगे, तानाशाही की स्थायित्व उजागर करते हुए। जवाब नवीनीकृत संघर्ष में है, कहीं भ्रम अपूर्णीय न हो जाए। संदर्भ एमनेस्टी इंटरनेशनल जर्मनी, अथॉरिटीज मस्ट एंड रिप्रेशन ऑफ पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, अक्टूबर 2025। अरब सेंटर, वॉशिंगटन डीसी। सप्रेसिंग पैलेस्टाइन एडवोकेसी इन द वेस्ट, ट्रेंड्स एंड काउंटर मेजर्स। अरब सेंटर, वॉशिंगटन डीसी, 2025। वीसी सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन। म्यूनिसिपल बायलॉज रिस्ट्रिक्टिंग प्रोटेस्ट्स इन कनेडियन सिटीज। क्या रिपोर्ट्स 2024-2025। Canadian Dimension. Police crackdowns on university encampments, a violation of fundamental freedoms. Canadian Dimension, May 2025. FID, International Federation for Human Rights. Western democracies sustained attack on the right to protest in solidarity with Palestine. FID Report, 2025. Human Rights Watch. United States, crackdown on campus protests. Human Rights Watch, 2025. Human Rights Watch. West Bank, Israeli forces and settlers escalate violence and forced displacement. Human Rights Watch Report, 2025. International Civil Liberties Monitoring Group. Systemic repression of pro-Palestine activism in Canada. ICLM, 2025. Media Bias Meter. Analysis of Western media coverage of the Israel-Palestine conflict, 2023-2025. Media Bias Meter Study, 2025. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR. UN experts alarmed by persistent pattern of police violence and suppression of Palestine solidarity in Germany. OHCHR Statement, October 16, 2025. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA. West Bank, Protection of Civilians Report. OCHA, 2025. Zappa, Frank. interview quotation widely attributed in collections of his statements on government and freedom, circa 1970s-1980s.